इन दोनों को पूजन करना है, दोनों एक ही समान कुछ लगा एक अंतर को भी ध्यान रखें, दोनों में अंतर। और जब जो वस्तु उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न हुई वस्तु हमारे सामने विद्यमान, और जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब जगत है, ये जगत अपने आप में पूर्ण या आनंद ऐसा करके दिख रहा है, लेकिन ये जगत स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न ही अपने आप में हो गया। उत्पन्न होने के लिए इसके पहले किसी वृक्ष की आवश्यकता थी जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए जगत उत्पन्न होने के लिए किसी दूसरी वस्तु पर आश्रित था, उत्पन्न होकर के दूसरी वस्तु पर आश्रित है, और ये जगत जो उसके उत्पत्ति होती कांत में बिना न सोता उसी जो पहले वाली वस्तु से जिससे उत्पन्न हुआ था उसी में जाकर के विलीन हो जाता है। जगत का और उस परमात्मा का दोनों का संबंध इस समझ में बताया, और एक विशेष प्रकार का संबंध है। यद्यपि जगत उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा का ही आश्रय रूप में ही हो जाएगा, लेकिन जगत की उत्पत्ति उस प्रकार नहीं हुई जैसे कि हम बहुत सी वस्तुओं को इस संसार में उत्पन्न होते हुए देखते हैं। जैसे जनाब या दही बन गया, तो दही कहाँ का है, कहाँ उत्पन्न हुआ, दूध का है, और जब दूध दही बन गया तो दूध भी बच जाए और दही भी बन जाए, एक 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 लोटे का दूध लिया और दूध को दही जमा दिया और एक लोटे पर दही बन गया, तो एक लोटे पर दूध भी बना रहे और एक लोटे पर दही भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूध में दही बनेगा तो दूध वहां रही जाए, दही रही जाएगा, तो जैसे दूध से दही बनता है इस प्रकार से परमात्मा से जगत नहीं बना। ये बताने के लिए पंडित जी कहते हैं पूर्ण से पूर्ण आधार है, जब पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई रचना हुई बन गया तो पूर्ण निर्वाचित करते वो जिससे कि जगत की उत्पत्ति हुई थी वो फिर उसी प्रकार का इंटेक्ट पूर्ण बना रहा। तुम्हारे कुछ और सोचना पड़ेगा कि वो परमात्मा का परमात्मा दूध का दूध बनेगा और ये जगत दही दूध जगत उसके स्थान बन गया और ये भी बन गया और दूध का दूध भी बना रहा और दही का दही बन गया, ये दोनों ही बातें हो जाए। तो और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मिट्टी के घर का बनना है, जल से घर का बनना है, ऐसे भी उदाहरण है। जल से करंट बनती है, जल से बना रहता है तो करंट बन जाती है, मिट्टी से घर बनता है, मिट्टी की मिट्टी बनी रहती है, घर भी बन जाता है, ऐसे दृष्टान है। इन सिद्धांतों को काम लेना सब ताना और गुण किया सब घर बना, तो मिट्टी में जब किसी प्रकार की क्रिया होती है उसमें कोई परिवर्तन मिट्टी में होता है तब उसका रूप बनकर के घर बनता है। जल से तरंग की उत्पत्ति होती है तो जल में भी कोई हरकत होती है, कोई मूवमेंट इस तरह तब तरंग बनती है। इस प्रकार से है तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो रचनाएं हैं इन रचनाओं में जो उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति का प्रभाव कुछ कारण में दिखाई देता है। मिट्टी में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ तब घर की उत्पत्ति होती, जल में भी कुछ परिवर्तन हुआ तब तरंग की उत्पत्ति होती। और भी आगे चलकर हम देखते हैं तो एक दृष्टांत ऐसा भी है, जैसे प्रकृति से संबंध है, एक खड़ा हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ पेड़ पर कटा हुआ कुंभ, एक पुरुष दिखाई दे संध्या काल में अंधेरे में कि कोई चोर खड़ा हुआ है, कोई रागी खड़ा हुआ जाती है, उधर से निकलेंगे तो मारे गए राशि चरण में समझे और है वहां पर पूरी। अब इन दोनों देखो रस्सी और सब में क्या संबंध है, क्या वृष्टि से जब शब्द की उत्पत्ति होती है तब वृष्टि में मिट्टी की तरह से कोई उसमें सामना होना पड़ता है जो उसको करना पड़ता है तो तब शब्द की उत्पत्ति होती वैसी वृष्टि वृद्धि बनी रहती है कोई परिवर्तन नहीं कोई प्रभाव नहीं और शब्द बनी बन गया सब के बनने से वृष्टि में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ कोई परिवर्तन नहीं हुआ कोई अकृति नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसी जो वृष्टि से शब्द उत्पन्न किए हुए ऋषियों की बताना चाहते हैं जैसे रस्सी से सर्प की उत्पत्ति होती सूक्ष्म से पुरुष की उत्पत्ति होती जैसे कि मंथन में मरिमरीचिका उत्पन्न होती मरिमरीचिका तो मरिमरीचिका उत्पन्न होकर के जब पानी उत्पन्न हुआ जो दिखाई देता है जल भरा हुआ सरोवर की तरह से क्या वो जल उस बालू को जहां पर जिस मंथन की बालू में उत्पन्न हुआ जल उस बालू को सीधा कर सकता है गर्म बालू को ये उस बालू को भिगो सकता है कहीं जब सरोवर खराब हुआ है तो अब नीचे की बालू भीगी हो गई तो मरे मरीचिका के जल से मरकर की बालू का एक तरह भी भीग नहीं सकता तो वैसे ही वैसा बना रहे और जल भी उत्पन्न हो गए किसी प्रकार से वो परम परमात्मा अपने स्थान पर निर्विकार रूप होकर के वैसे ही वैसा बना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ कोई विकार कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हुई कोई गड़ावड़ी नहीं हुई जरा वैसे ही बना और फिर चेतना हुई ना उन पास में जगत का विकार हो गया चेतना विकार सृष्टि विश्व उत्पन्न होकर के दिखाई जब कार्य और कारण का संबंध ऐसा होता है कि कार्य की उत्पत्ति होने पर कारण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो निर्विकार उसी प्रकार का बना रहता है तब इसको अपने दर्शन शास्त्रों में विद्वानों ने एक शब्द दे दिया इसे कहते हैं विवर्तवाद विवर्तवाद विवर्त के माने कारण रूप परमात्मा से कार्य रूप जगत का विस्तार विवर्त करे और दूसरे जो उदाहरण पहले दे रहे थे कि दूध से जो दही बना वो परिणाम मार जो मिट्टी के घर नगोरी परिणाम बात दो प्रकार के एक वायु परिणाम बात एक अंतर परिणाम बात वायु परिणाम बात ऐसा कि मिट्टी से घर बना तो ये मिट्टी में वायु परिवर्तन हुआ उसने घर का रूप मिट्टी में धारण कर लिया एक मिट्टी पहले थी उसकी मिट्टी ने पिंड का रूप धारण किया तो उसमें वायु परिवर्तन इस प्रकार का मिट्टी में आंतरिक परिवर्तन जो नहीं हुआ पिंड में धारण कर लिया पिंड ने फिर जो है वो घट का रूप धारण कर लिया और घट टूटा तो पिंड बन जाए या मिट्टी बन जाए फिर अपने उसी रूप में आ गया तो ये जो वायु परिणाम मार होता है वो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है लेकिन कार्य जो है वो कारण पर ही आश्रित रहता है और जब कार्य कारण में लीन हो जाता है तब कारण यहाँ पर अपनी पूर्व रूप में आ जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन जब अंत परिणाम मार होता है अंत परिणाम जैसे दूध से दही तो बन सकता है बन गया दही और जब दही बन गया तो उसके बाद दही के बाद वो हम चाहेंगे फिर दूध बन जाए तो देखते हैं दूध नहीं बन जाए कहीं अगर दही नष्ट होगा तो फिर दूध बन जाएगा क्योंकि दूध दही से बना है तो ये नियम नहीं तो दही बन गया तो बन गया ये अंधा परिणाम वाला अंधा परिणाम बाद में कारण समाप्त हो जाता है कार्य का रूप धारण कर लेता है और फिर वो कार्य कारण का रूप धारण नहीं करने पाता बाई परिणाम बाद में कारण कार्य का रूप धारण करता है और जब तक कार्य विद्यमान है तब तक वो कारण कार्य के रूप में उपस्थित होता है और कार्य समाप्त हो जाने के बाद में फिर वो कारण अपने रूप में आ जाता है यह बाह्य परिणाम बाद और विवर्तवाद में कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है कारण में कोई परिवर्तन नहीं आता न बाह्य परिवर्तन होता है न आंतरिक परिवर्तन होता है कारण में दोनों में से कोई परिवर्तन नहीं होता वो उसी प्रकार से अप्रभावित बना रहता है और उससे काय की उत्पत्ति हो जाती है और उत्पत्ति होकर के ये जगत रूपी काय उस समय विद्यमान होता हुआ दिखाई देता है और बिल्कुल सत्य भाषित होता है उसका अस्तित्व भी उपलब्ध होता है। लेकिन जब ये जगत समाप्त होता है और ये कह सकते हैं कि जगत समाप्त होने के बाद जिस कारण उत्पन्न हुआ था उसी कारण चला गया, तो जब जगत कारण परमात्मा में जाकर के लीन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो परमात्मा जगत उसमें लीन होने के बाद में फिर परमात्मा कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें जगत भी आकर के घुस गया है तो उसका नाम कोई विस्तार हो गया हो तो वो भी उसमें कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से कार्य का प्रभाव जब कार्य के ऊपर रचना काल में भी और विनाश काल में भी न पड़े और कार्य यथावत उसी प्रकार का बना रहे, उसमें कोई परिणाम परिणमन न हो, न बाहरी परिणमन हो न आंतरिक परिणमन हो, तब उसको कहते हैं विवर्त। तो ये है उपनिषद इस प्रकार की सूचना, जिन शब्दों का नाम नहीं देते कि बाहरी परिणाम क्या है, अंतः परिणाम क्या है, विवर्त क्या है, इसका नाम नहीं देते, लेकिन ये उपनिषद का ये मंत्र ये यही सूचित करता है कि परमात्मा और जगत का एक अद्भुत संबंध है, इस संबंध को समझना चाहिए। जब ऐसा नहीं हो सर वही सर उत्पन्न देते हैं और जब उसे अज्ञान का उसका निवारण हुआ, प्रकाश आया, लोगों ने उसकी सहायता की, रस्सी लेकर के उसको दिखा दी, तो जब उसे रस्सी दिखने लगेगी तो फिर भी सब दिखेगा तो सब नहीं दिखेगा, जब रस्सी दिखेगी तो सब नहीं दिखेगा, सब दिखेगी तो रस्सी नहीं दिखेगी। इसी तरह की ये जगत, जब तक ये जगत करके हम जगत को देखते रहते हैं यथावत, तब तक परमात्मा नहीं दिखता, और जहां परमात्मा तक पहुंच गए परमात्मा दिखने लगा तो जगत नहीं दिखाई देता। दोनों से एक ही दिखाई देते, इसलिए दोनों को पूर्ण भी कहते हैं। पूर्ण के माने जगत पूर्ण के साधन है कि सर्वत्र जगत ही जगत अपनी सत्ता से अपने आप विद्यमान अनंत होकर के हमारे सामने विद्यमान है, तो ये पूर्ण अपने आप में लगता है। लेकिन ये जगत एक ऐसा पूर्ण वस्तु है जो किसी दूसरे पूर्ण से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता इसकी नहीं है। जैसे सर्व इस समय जिस समय सर्व सगुण के लगता है उस समय हमें बिल्कुल सर्व ही सत्ता है, लेकिन वो सर्व स्वतंत्र नहीं होता, होता रस्सी पर ये रस्सी न होती तो सर्व का भंग ही नहीं हो सकता। किसी प्रकार से जगत हमको जिस समय दिखाई देता है उस समय केवल जगत ही दिखाई देता है, लेकिन उस समय भी ये जगत परमात्मा के ऊपर आश्रित है, परमात्मा के बिना ये जगत उस समय नहीं होता। मूल में विद्यमान परमात्मा जहाँ परमात्मा को हमने देखा उसी के साथ साथ हमको पता लग गया ये जगत कुछ नहीं था, ये सर्व की तरह खाली मात्र मृग मनीषा की तरह से खाली मात्र थी, एक झूठ के ऊपर दिखाई देने वाले किसी दो पुरुष की खाली मात्र थी, पर इस प्रकार था। अब ये बात ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि कैसा व्यक्ति इस बात को समझे स्वीकार करे, तो बुद्धि के द्वारा बहुत जल्दी उसमें व्यक्ति ने धीरे धीरे करके विचार करते करते जब बुद्धि विकसित होती जाती है, व्यक्ति अपने अंदर तरह प्रवेश करता जाता है, तब अंत में जाकर के परमात्मा भाव विकसित होता है, तब उसके सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। यही विषय का विस्तार फिर उपनिषद में संदेह किया गया है, उसको धीरे धीरे करके श्लोक में आसंधि है, इसी को आधार मान करके उपनिषद का जो ईशावासी श्रवण करके मंत्र है वो इसी ज्ञान के ऊपर आश्रित है। ये इसको ध्यान में रखें, इसमें व्याख्या भी लिखिए, इसको भी पढ़ लें और चित्र में इस बात को बैठाने का प्रयास करें जिससे आगे की बात समझ में आए। आगे
श्री कृष्ण गोविंद हरे।